दादी प्लीज इस बार नहीं, डैड ने जो किया वो माफी लायक नहीं है, उन्हें तो अपनी गलती का एहसास तक नहीं है। जब तक हम इनके साथ रहेंगे उनकी हमें अलग करने की कोशिश ऐसे ही चलती रहेंगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी और इनाया की खुशियां, हमारा रिश्ता इनकी साजिशों का शिकार बने। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब हम दोनों यहां कभी नहीं आएंगे, इनसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। मैं तो कंपनी भी छोड़ देता, इनसे पूरी तरह से अलग हो जाता, लेकिन उस कंपनी को दादू ने बहुत मेहनत से खड़ा किया है और मैं नहीं चाहता कि उनकी मेहनत मिट्टी में मिल जाए, इसलिए मैं कंपनी नहीं छोड़ रहा। लेकिन अब यहाँ रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन मैं आपकी बात काटकर आपका निरादर नहीं करना चाहता, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए। कायरव अब भी अपने फैसले पर टिका था, वो बेहद सीरियस था और उतना ही दुखी और नाउमीद भी। दादी अब भी खामोश खड़ी थी। हम आपको यहाँ रुकने के लिए कहने नहीं आए हैं, हम तो आपको ये बताने आए हैं कि हम भी आपके साथ चलेंगे। जैसे ही दादी ने अपनी खामोशी तोड़ी, वहाँ मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए और आंखों की पुतलियाँ अविश्वास से फैल गईं। दादी ये आप क्या कह रही हैं, मतलब आप सच में ये घर छोड़ना चाहती हैं? जबकि यहाँ से दादाजी की यादें जुड़ी हैं, इसलिए पहले कितनी ही बार बोलने पर भी आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं होती थीं, और आज ऐसे अचानक? कायरव हैरान नहीं, शॉक था, दादी ने दुखी स्वर में कहा। बेटा यादें तो दिलों में बसा करती हैं, अब तक यहाँ रुकने की वजह ये नहीं थी कि यहाँ से आपके दादाजी संग हमारी यादें जुड़ी थीं। आपके दादाजी इस परिवार की जिम्मेदारी हमें देकर गए थे, हमारा फर्ज था कि हम इस परिवार को एक साथ जोड़कर रखें। हम जानते थे कि आप अगर यहाँ आते हैं तो उसकी वजह सिर्फ हम हैं। जिस दिन हमने ये घर छोड़ दिया, आप इस घर की तरह पलट कर भी नहीं देखेंगे और हमारा परिवार दो हिस्सों में बट रहेगा, इसीलिए हम अब तक यहाँ रहे और कोशिश करते रहे इस परिवार को एक साथ रखने की। लेकिन आज जो हुआ उसके बाद हमें एहसास हो गया है कि हम कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर लें, लेकिन इस परिवार को बटने से रोक नहीं सकते। अब हमारे लिए यहाँ रहना मुमकिन नहीं है, इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम भी आपके साथ जाएंगे। दादी के इस फैसले से सभी हैरान थे, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि दादी ऐसा कदम उठाएंगे, लेकिन वो अपने फैसले पर दृढ़ता से खड़ी थीं, शायद अब वो भी थक चुकी थीं। दादी चलते हुए मिस्टर रायचंद के सामने आकर खड़ी हो गईं और बेहद दुखी स्वर में बोली, आज आपकी खुदगर्जी ने इस परिवार को टुकड़ों में बांट दिया, आपने खुद अपने हीरे जैसे बेटे को खुद से दूर कर दिया, आपकी हरकतों ने हमें ये घर छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, अपनी गलतियों को समझकर प्रायश्चित करो, अपने बेटे को समझो, उनकी खुशियों का हिस्सा बनो, खुद से जुड़े रिश्तों की कद्र करो, इस परिवार को टूटने से बचा लो, वरना वो दिन दूर नहीं जब तुम अपने इकलौते बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। इसके बाद भी मिस्टर रायचंद के चेहरे पर कोई गिल्ट नहीं था, अभी भी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर गुरूर सजा था। दादी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई और हताश निराश होकर वो कायरव के पास आ गई। मिस्टर रायचंद की आंखों के सामने वो तीनों घर की दहलीज पार करके वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मिसेज रायचंद ने नाराजगी भरी नजरों से उन्हें देखा, अफसोस से सर हिलाया और वहां से चली गई। मिस्टर रायचंद अब भी वहीं खड़े एकटक उस दिशा में घूरे जा रहे थे जहां से अभी अभी वो तीनों गए थे। ये तूने अच्छा नहीं किया, मेरा बेटा तो तूने पहले ही मुझसे छीन लिया था, आज तूने मुझसे मेरी माँ को भी दूर कर दिया, इसकी कीमत चुकानी होगी तुझे, मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा, अब चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े, लेकिन मैं कायरव की जिंदगी से तुझे बाहर निकाल कर रहूंगा, उसे वापस इस घर में लेकर आऊंगा और उसके बाद वो वही करेगा जो मैं कहूंगा। मिस्टर रायचंद की आंखों में इनाया के लिए बेहिसाब नफरत थी और चेहरा डरावना लग रहा था, उनके इरादे खतरनाक थे और अब इनाया से बदला लेने के लिए वो क्या करने वाले थे इससे सभी अनजान थे, लेकिन ये तो तय था कि वो शांत नहीं बैठने वाले थे। कार में सन्नाटा था, कायरव ड्राइव कर रहा था और इनाया दादी के साथ पीछे बैठी थी। दादी ने अपना घर छोड़ा था, वही घर जहां उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी बिताई थी, आज मजबूरन उन्हें उस घर की दहलीज लांघनी पड़ी थी जहां उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर अपने प्यार का आशियाना बनाया था। वो दिखा नहीं रही थी लेकिन अंदर से बहुत दुखी थी और इनाया ये बात जानती थी, इसीलिए वो उनका हाथ थामकर उनके साथ बैठी हुई थी, पर ध्यान उसका पूरा कायरव पर था। कायरव भावहीन सा कार ड्राइव कर रहा था लेकिन इनाया उस खामोशी के पीछे छुपी चीखें सुन सकती थी, उसका दुख उदासी उससे छुपी नहीं थी, वो उससे बात करना चाहती थी लेकिन यहाँ दादी की मौजूदगी में कुछ भी बोलकर उनके दुख को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसीलिए चुप ही रही। कार कायरव के मेंशन के पोच में आकर रुकी, तीनों बाहर निकले, कायरव ने गार्ड को कीज दी और दादी को अंदर ले आया, साथ में इनाया भी थी जो बस खामोशी से उसे ऑब्जर्व कर रही थी। दादी अब से ये आपका रूम है, मैं ड्राइवर को भेजकर कल आपका सामान भी मंगवा लूंगा, ये आशा है आपके साथ वाले रूम में रहती है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो इसे कह दीजिएगा, मैं और इनाया भी ऊपर रहते हैं। कायरव दादी को ग्राउंड फ्लोर पर बने रूम में ले आया था और आशा से उनकी पहचान करवा रहा था। दादी आप आराम करो, डिनर तैयार होगा तो मैं आपको बुलाने आ जाऊँगा। दादी ने सर हिलाया और बेड पर बैठ गई। कायरव ने पलटकर इनाया को देखा और रूम से बाहर निकल गया। इनाया आकर दादी के पास ही बैठ गई। जाओ बहू आरव के पास जाओ, उन्हें इस वक्त तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। मैं चली जाऊंगी दादी, मैं तो आपको ये कहने के लिए रुकी थी कि आप ज्यादा उदास मत होइए, ये भी आपका ही भैर है और कायरव आपसे बहुत प्यार करते हैं, अगर आपके चेहरे पर उदासी या दुख दिखेगा तो वो और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। इनाया ने उनकी हथेलियों को अपने हाथ में थाम लिया। कायरव के लिए उसका प्यार और फिक्र देखकर दादी अपना दुख भूलकर मुस्कुरा दी। उन्होंने प्यार से उसके गाल को छुआ। ठाकुर जी का कोटि कोटि आभार कि उन्होंने हमारे आरव की जिंदगी में अर्धांगिनी बनाकर आपको भेजा। आप बस हमेशा ऐसे ही उनके साथ रहिएगा, जब जब वो कमजोर पड़े उन्हें प्यार से सहारा देकर संभाल लीजिएगा। अब आप जाइए, हमारी चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। मैं बस अभी आपके पोते से बात करके आई, इनाया ने खिलखिलाते हुए कहा और जल्दी से वहां से निकल गई। जाते जाते आशा को डिनर का मेन्यू भी बता गई। इनाया रूम में आई तो उसे कायरव काउच पर बैठा नजर आया। उसकी बैग काउच के बैक से टिकी थी, आंखें बंद थी, चेहरा भावहीन पर भौहें तनी हुई थी और माथे पर कुछ सिलवटें भी मौजूद थी। इनाया ने धीरे से डोर बंद किया और बिना आहट किए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। पता नहीं कायरव को उसके आने का एहसास हुआ था या नहीं, लेकिन वो वैसे ही बैठा था। ना उसकी खामोशी टूटी, ना उसने अपनी आंखें खोली और ना ही उसके एक्सप्रेशन बदले। इनाया आकर कायरव की गोद में बैठ गई, एक बांह उसके गले में डाल दी। क्योंकि कायरव ने उसे नहीं पकड़ा था तो गिरने का डर था। इनाया कुछ देर खामोशी से और गौर से उसके चेहरे को देखती रही, फिर हाथ उठाया और अपनी उंगलियों से उसके माथे पर पड़ी लकीरों को मिटाने लगी। कायरव की तनी हुई भौहें धीरे धीरे नॉर्मल हो गईं। थैंक यू मुझसे इतना प्यार करने के लिए, इनाया ने अपने नरम नाजुक होंठ कायरव के माथे पर रख दिए। होंठ जरा फिसले और उसके गालों पर आकर ठहर गए। थैंक यू मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए।
थैंक यू सिया के सड्यूस करने पर भी ना बहकने के लिए, मेरे विश्वास को बनाए रखने के लिए। इनाया ने उसकी नाक को छुआ, फिर थोड़ा पीछे हटी। कायरव अब भी आंखें बंद किए बैठा था। इनाया ने अपना सर उसकी गर्दन में छुपा लिया और उसके कान में सरगोशी की। आई लव यू, इनाया ने तिरछी निगाहों से उसे देखा और उसकी बंद आंखें देखकर अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख दिए। धीरे धीरे उसकी गर्दन, कंधे और सीने को चूमने लगी। जहां जहां सिया ने उसे छुआ था उसकी छाप मिटाकर इनाया वहां अपना लम्स छोड़ रही थी। कायरव की बाँह उसकी कमर पर आकर लिपट गई और अनजाने तौर पर उसने इनाया को अपने करीब कर लिया। इसके साथ ही इनाया रुक गई, सर उठाकर देखा कायरव की आंखें अब भी बंद थीं। इनाया ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया। कुछ देर खामोशी से उसे देखने के बाद उसके होंठ फड़फड़ाए और जो कहा उसे सुनकर कायरव की भौहें तन गई। उसने झटके से आंखें खोल दीं। टू बी कंटिन्यूड।